क्लास की शुरुआत करें उससे पहले एक प्रश्न है। मौसम के अनुसार आप लेमन जूस पीना चाहेंगे या चाय पीना चाहेंगे? क्योंकि पिछले ग्रुप में आधा बच जाता था, तो शायद मौसम के अनुसार लोग प्रिफर नहीं करते हैं जूस नींबू का। इसलिए बनेगा तो कोई भी एक ही चीज बनेगी। अब मेजॉरिटी क्या है आप बता दो। चाय, ठीक है, ओके, ऑप्शन। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता प्रेम मसन भाई जी पहुंचे हैं। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी इंदौर नगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 79 में आपने इंदौर से ही अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की और 80 में वहीं पर आपको बाबा का ज्ञान भी मिला और उसके बाद तो आप अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए विदेश चले गए। अमेरिका, साउथ अमेरिका में करीब 10 वर्षों तक अपनी लौकिक जॉब भी करते रहे, अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और फिर 10 वर्षों के बाद पुनः भारत में आए और 5 वर्ष तक आपने मुंबई में अपनी सेवाएं की, लौकिक जॉब। और उसके बाद जब 1995 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का उद्घाटन हुआ तो आप माउंट आबू आ गए और यहाँ पे अपनी ऑनरेरी सर्विसेज देने लगे। बाल ब्रह्मचारी हैं आप, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, नीचे जो शांतिवन में डिस्पेंसरी है वहाँ आप अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे ही भारत भर में तो क्या विश्व भर में बाबा की सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहते हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर हैं आज हमारे बीच में, बहुत सुंदर विषय पर हमें मार्गदर्शन देंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। पहले हम अपने को चार्ज करते हैं, थोड़ा खड़े हो जाएं।
चले चले रे धारा ओ नदियां, चले चले रे धारा चंदा, चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना
कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, मंजिल को तरसे चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
ओ नदिया चंदा चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
फिर गया वो भंवर में नाव तो क्या बह जाए किनारा ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा बड़ी ही तेज समय की है धारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
तुझको चलना होगा तुझको चलना
एक जगह पर रामचरितमानस का कीर्तन चल रहा था और पंडित जी बहुत अच्छा बता रहे थे भगवान राम के बारे में, लंका के बारे में, अशोक वाटिका के बारे में। वहां से हनुमान जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा मैं भी सुनता हूं। वेश बदल कर वो भी बैठ गए और सुनने लगे। पंडित जी ने जब अशोक वाटिका का बताया कि वहां फूल सफेद थे तो हनुमान जी खड़े हो गए, बोला सफेद नहीं थे लाल थे। डिस्कशन चलता रहा कि सफेद थे कि लाल थे। प्रॉब्लम मैटर श्री राम जी के पास पहुंचा। श्री राम जी ने दोनों का सुना और कहा फूल सफेद ही थे। हनुमान को बोला आप जब वहां गए थे गुस्से में लाल थे, आपकी आंखें लाल हो रही थी इसलिए आपको फूल लाल दिखे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका अर्थ ग्रॉस आईज नहीं है, सूक्ष्म नेत्र है। परमात्मा ने हमको दिव्य नेत्र दिया है, बुद्धि रूपी नेत्र दिया है। जो भी बाबा की बातें हैं वो सब सूक्ष्म हैं। ये आंखें भी अपना काम करती हैं, इन्फॉर्मेशन लेती हैं। सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी आंखें लेती हैं, कान लेते हैं और इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। ब्रेन के कुछ एरिया में वो जाकर स्टोर होती है और फिर हम उस इंफॉर्मेशन के अनुसार एक्ट और इंटरैक्ट करते हैं। यहां पर जो हमारे अंदर होता है वही रिफ्लेक्ट होता है। जो मेरी वृत्ति में है या कहूं स्मृति में है, मेरी स्वस्थिति में है, मेरी वृत्ति में है, वो ही वातावरण बनता है, वाइब्रेशन बनता है और उससे ही सृष्टि का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड। आप कहां पहुंचना चाहते हैं वर्ल्ड में, लाइफ में, यूनिवर्स में, वो डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण क्या है, वृत्ति क्या है। क्योंकि वृत्ति अगर पावरफुल है तो हमारी दृष्टि भी पावरफुल होगी। हमारे वाइब्रेशन पावरफुल है तो वो ट्रांसफर होंगे। और जो बाबा बार बार कह रहा है कि 7 दिन के कोर्स के बजाय 1 सेकंड का कोर्स कराओ, और अब मैं देख रहा हूं वो समय चल रहा है, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद एक नया पैराडाइम आ गया, एक नया चेंज आ गया, नया परिवर्तन आ गया, नया मॉडल आ गया। जितना भी फीडबैक मेरे पास आता है उस फीडबैक में यही आता है, शॉर्ट प्रिसाइज। हमें शॉर्ट चाहिए और प्रिसाइज चाहिए। हिंदी में कहें, आज के लोग कहते हैं काम की बात बताओ। सबसे पॉपुलर कोरोना के टाइम आधा घंटा के लेक्चर जो इवनिंग में चलते थे 7:30 से 8, वो बहुत पॉपुलर हुए। और अभी तक उनका फीडबैक आता है कि वो 20 मिनट हम सुनते थे। तो समय बदल गया, और बाबा ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा समय आएगा जब आपको नजर से निहाल करना पड़ेगा, दृष्टि से ही उनको खुशी देना पड़ेगी। जब तक हमारी खुशी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो आज का भी स्लोगन था कि खुशी और शक्ति का हमें लोगों को देना है। मैं अभी 1 महीने से कुछ शिविर करा रहा था नीचे, और मैं देखता था उन शिविर में एक्सरसाइज भी करा रहे हैं पर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बहुत लो होता था। फिर मैंने इंटरेक्ट किया और चेंज किया, लॉफिंग थेरेपी कराई, लोगों को खुशी दी, लोग चार्ज हो गए, बोला यही चाहिए। उनको और कुछ याद नहीं था, हमें खुशी चाहिए। तो ये ऐसा समय है वर्ल्ड का, लोगों को शांति, प्रेम और खुशी चाहिए। ये 3 इंग्रेडिएंट हर आत्मा के हैं, और अगर ये 3 नहीं मिलते हैं तो बीमारियां भी आती है, हार्मोन लेवल भी बदलता है, और कई तरह की सिचुएशन भी आती हैं। इसीलिए डिप्रेशन भी बहुत कॉमन होता जा रहा है वर्ल्ड में। अब डिप्रेशन एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बनता जा रहा है, और आने वाले समय में अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम होगा, निराशा। डिप्रेशन का अर्थ केवल ये नहीं है कि मेरी सीरोटोनिन लेवल कम हो गई, डोपामिन लेवल कम हो गई, ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो गई, इसका अर्थ है निराशा, उमंग, उत्साह नहीं है। और कोरोना के बाद लोगों में एंजाइटी, डर, अनसर्टेनिटी बढ़ गई, लोग निकलना नहीं चाहते, अभी भी उनमें इतना डर है। तो उसको देखते हुए बाबा ने हमें पहले से ही ट्रेन कर दिया कि बहुत काल का अभ्यास आपका काम आएगा, अचानक एवर रेडी रहना है। सिचुएशन अचानक आएगी, एवर रेडी रहना और बहुत काल का अभ्यास करना है। हाथ उठाएं और कहें अपने को, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सब कुछ ठीक है, मैं अपने को प्यार करता हूं, आई लव यू। हमें एक आंख से मुक्ति, दूसरे आंख से जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। वही दृष्टि से सृष्टि का कंस्ट्रक्शन है। आईज क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। आंखें क्या करती है, ट्रांसफर करती है एनर्जी को। आंखें नहीं भी हो तो फिर भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्योंकि कई चीजें हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं पर फील कर सकते हैं। हेलन केलर वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर रही, कई मूवीज कई अवार्ड मिले, ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, यूएसए की अमेरिका की। उसने ये कोट बहुत अच्छा लिखा, काफी चीजें हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं पर अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और वही बाबा कह रहा है, अनुभव करो, यूज करो ज्ञान का, एक एक पॉइंट जो अच्छा लगा उसका उपयोग करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ। हमारा ज्ञान कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारा ज्ञान कोई सीरियस नहीं है, ज्ञान क्या है, इजी है। हम उसको कॉम्प्लिकेट बनाकर जीवन में लाना चाहते हैं तो चेहरे हमारे डाउन हो जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं चेहरे डाउन है, फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, अपार खुशी है, वाह मेरा भाग्य, बाबा मेरे साथ है। एक दूसरे को देखो और कहो, हाँ एक दूसरे को देखो और कहो बहुत अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छे हो। फिर खुद को कहो मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं। अब थोड़ी एनर्जी आई, ठीक है, ताली बजाओ, खुद को कहो आई एम द बेस्ट। ज्ञान का अर्थ ही है सिंपल और सैंपल, कोई दिखावा नहीं करना है। जगदीश भाई जी यही क्लास कराते थे, मुझे याद है हम भी बैठते थे, दादियां बैठती थी, उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट आज तक याद रहता है, न दिखाना है न दिखना है, अपने को देखना है। न दिखाना है न दिखना है, अपने को देखना है। पूरे ज्ञान का सारी क्या, खुद को देखो, खुद को घोटो। जब तक हम घोटेंगे नहीं तो खुशी चढ़ेगी नहीं। क्लासेस कितनी भी कर लें पर जब तक उनको हमने धारण नहीं किया, मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वो ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा। उसका मक्खन निकालना पड़ता है और तब वो ताकत आती है, खुशी आती है। तो खुशी खुद को भी दो और दूसरों को भी दो। तो परमात्मा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है और रूहानी दृष्टि दी है, दो गिफ्ट हमें मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी बुद्धि का है, इंटेलेक्ट का है। जितनी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहती है, शार्प रहती है, उतना हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लोग फील करें जब ये आता है, ये आत्मा आती है, हमें खुशी मिलती है। अगर हम घर से सेंटर के लिए जा रहे हैं और सीरियस हैं और लोग हमें देख रहे हैं और हमें मालूम है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, क्योंकि हम लोग हीरो हैं, हीरोइन हैं, लोग हमें वॉच कर रहे हैं, और अगर हम सीरियस हैं तो वो कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही हैं, इनमें और हमारे में फर्क नहीं है। न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखो। तो खुशी अंदर की है हमारी, बाहर की नहीं है। चेहरे चलन से खुशी का ट्रांसफर हो, क्योंकि हमारा जो सत्युग और त्रेता है वो क्या है, खुशी का युग है। लैंड ऑफ साइलेंस, परमधाम, अनादि शांति का घर, साइलेंस। वहां कोई एक्टिविटी नहीं है, वो एटॉमिक एनर्जी का एक प्रोडक्ट है। सत्युग और त्रेता हमारे खुशी का प्रोडक्ट है, एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है। वहां हमें खुश नहीं रहना पड़ता, ऑटोमेटिक हम हल्के रहेंगे। वहां वही थॉट्स आएंगे जो हमें शक्ति देंगे, खुशी देंगे। वहां ड्वेलिटी चलती नहीं, दो चीजें आएगी नहीं, दुख और सुख, वहां सुख ही सुख चलेगा। प्लेन में बैठा, जहां मेरे को जाना है वहां फ्लाइट उड़कर जाएगी, मेरे को कुछ नहीं करना है, न स्टार्ट करना है, न प्रोग्राम डालना, खुद ही जाएगा। क्योंकि अभी बाबा हमें वॉइसलेस से वायरलेस सिखा रहा है। जितना मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, उतना मैं ट्रांसफर करूंगा दृष्टि से। प्यूरिटी हमारी पर्सनैलिटी है और वही एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और अभी जो समय चल रहा है, जो बाबा बार बार कह रहा है, चलन और चेहरे से सेवा करो। बोलने की सेवा बहुत कम होती जाएगी। जो बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स 1 सेकंड में कराओ, अब व्यक्ति इतना प्री ऑक्यूपाइड है, हेवी है, इतनी फाइलें खुली हुई है, सुन ही नहीं सकता। प्री ऑक्यूपाइड माइंड, चाहे ज्ञान वाले चाहे बाहर वाले, इतनी फाइलें, ये कर लू वो कर लू, ये कर लू वो कर लू, वे कर लू, और जो करना है, जो फोकस करना है, वो हम करते नहीं, बाकी सब चीजें भागते रहते हैं। इसीलिए कहा आज का तनाव का सबसे बड़ा कारण FOMO है, FOMO, FOMO। पहले मैं कहता था, अब बाहर वाले भी ये कह रहे हैं। FOMO का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं मिस नहीं हो जाऊं, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, यहां भी मकान ले लूं, वहां भी ले लूं, इधर भी ले लूं, क्या होगा मेरा। तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को वेस्ट करता रहता है। और बाबा ने हमें सिखाया, जहां हो जैसे हो, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी एनर्जी को अगर लौकिक से अलौकिक में बदलकर चलते हो, तो आप हर जगह परमधाम सूक्ष्म वतन क्रिएट कर सकते हो। सत्युग त्रेता मेरा खुद का ही है, मेरी सोच है, मेरे संकल्प अगर पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, खुशी वाले हैं, तो सत्युग है। सत्युग का अर्थ ही है हल्कापन, खुशी, लाइट। संगम पर अगर मैं लाइट रहता हूं, हल्का रहता हूं, खुश रहता हूं, तो सत्युग और त्रेता में आराम से जाऊंगा। अगर मैं यहां टाइट हूं, हेवी हूं, जो बाबा ने अभी एक मुरली में बोला, वजन लेकर ही चलते हैं, बस में बैठेगा तो वो पोटली लेकर ही बैठेगा, वो हमारी हैबिट हो जाती है वजन को लेकर जाने की, कंप्लेन करने की। कंप्लेन, हमें कुछ नहीं करना है, क्यों क्या हमें जाना नहीं है, जो हो रहा है ड्रामा को देखते रहो, हर सीन को देखो और हर सीन को मजे में देखो और एंजॉय करो। खड़े हो जाएं।
फिर भरपूर बनेगा, ओ फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। कृष्ण कन्हैया था राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया था राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सतधर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सतधर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी।
राजा भोज दरबार में बैठे हुए हैं। एक व्यापारी आता है, राजा भोज की नजर उस पर पड़ती है और सोचते हैं, संकल्प आता है कि क्यों नहीं मैं इसकी पूरी संपत्ति राज्य खजाने में जमा कर दूं। वो संकल्प चलता रहा कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी को मैं जमा कर दूं। जब तक वो खड़ा था वहां, वो चला गया। उसने मंत्री से पूछा, ये विचार मेरे को क्यों आया, मैं तो राजा हूं, मेरा काम है पालना देना। मंत्री ने कहा, बताऊंगा, मेरे को कुछ समय दो। मंत्री गया उसी दिन उस व्यापारी के घर में, उससे अच्छी दोस्ती कर ली और दोस्ती करके पता किया उसको क्या स्ट्रेस है। उसने कहा, आपके पास तो इतनी चंदन की लकड़ी का व्यापार करते हो, इतना सारा चंदन है, फिर क्यों आपको इतना डर है, घबराहट है। व्यापारी ने कहा मेरे 30-40 ट्रक बहुत अच्छे चंदन की लकड़ी से पूरे फुल हैं, कई राज्य में गए पर कोई खरीद नहीं रहा है, तो मेरा पूरा पैसा अटका हुआ है। मंत्री ने कहा कुछ तो उपाय होगा। उसने कहा बिजनेसमैन ने, व्यापारी ने, एक ही उपाय है, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो जो उनका उसमें पूरी लकड़ी लग जाएगी। मंत्री को आंसर आ गया। मंत्री ने उसको कहा रोज कल से तू 1 टन लकड़ी चंदन की भेजा कर, राजा भोज का खाना रसोई उस पर बनेगी और तेरे को पैसा मिलेगा। बहुत अच्छा, खुश हो गया, पैसा आने लगा, रोज लकड़ी जा रही है और पैसा आ रहा है। फिर एक दिन वही व्यापारी दरबार में आया और राजा भोज की नजर उस पर गई तो उसको बड़ा अच्छा लगा, कहता ये तो बहुत अच्छा है। मंत्री को बुलाया कि इसको पुरस्कार दो। मंत्री ने फिर आंसर दिया, जब ये पहले आया था तो वो आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था, इसलिए आपको वो संकल्प आ रहे थे। अब वो आपके दीर्घायु की कामना कर रहा है, जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे राजा भोज, मेरी पूरी लकड़ी रसोई में काम आ जाएगी। दृष्टि से सृष्टि होती है। बाबा ने भी यही ये सिखाया सीक्रेट मंत्र। पूरे ज्ञान का अगर सीक्रेट मंत्र लें तो वही है शुभ भावना शुभ कामना। तो कोई कैसी भी आत्मा हो, कुछ भी मेरे लिए बोल रहा है, बोल रही है, शुभ भावना शुभ कामना दो, वही दुआएं के रूप में काम करती है। क्योंकि दुआएं सबसे बड़ा हथियार है और दुआएं ही सृष्टि का कंस्ट्रक्शन करती है। दुआएं का अर्थ ही है वाइब्रेशन। हमारा हर संकल्प एक एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है, पूरे यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स की सब आत्माओं के पास जाता है। हमारे बॉडी में 50-75 trillion सेल्स हैं, 150,000 प्रोटीन्स हैं। जब प्रोटीन डैमेज होते हैं तो बीमारी आती है। प्रोटीन डैमेज होते हैं 3 चीजों से, टॉक्सिन, ट्रॉमा, थॉट्स। टॉक्सिन जब ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन ऑफ जीन्स करेंगे और बीमारी होगी। दूसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा का अर्थ होता है कोई घटना को मैंने अंदर रख लिया, उसको छोड़ नहीं रहा हूं, चाहे वो बचपन से थी, वो घटना मेरे अंदर एकदम मेमोरी डाटा में चली गई है, उसको पकड़ के रखा है, तो वो भी बीमारी देगी। और तीसरा है हमारे थॉट्स, संकल्प। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे संकल्प, क्योंकि जो मैं अंदर सोच रहा हूं वही वाइब्रेट होकर दूसरों को जा रहा है। इस खेल में जितना जो ट्रांसपेरेंट होगा उतना वो दृष्टि से सृष्टि का कंस्ट्रक्शन करेगा। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है अंदर बाहर एक, मैं जो अंदर हूं वही बाहर हूं। सच्चाई, पवित्रता का अर्थ ही है सत्यता, और सत्यता का अर्थ ही है परमात्मा, ट्रुथ इज गॉड। अगर सच्चाई है तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन जाएंगे, और कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी है, ड्वेलिटी है, नेगेटिविटी है, तो प्रॉब्लम खुद को भी आते हैं, दूसरों को भी आते हैं। एक राजा ने, उसको चित्रकार चित्रों का बड़ा शौक था, उसने राजा ने कहा जो बहुत अच्छा चित्र बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। और हॉल की एक दीवार उस चित्रकार को दे दी, वो आया कहता मैं बनाता हूं, और एक दीवार उसको दे दी और वो अपने सब टूल्स टेक्निक लेकर आया और चित्र बनाने लगा। अगले दिन एक और चित्रकार आया, बोला मैं बिना देखकर इसका चित्र बनाऊंगा और मैं देखूंगा नहीं और वैसा का वैसा ही बनाऊंगा। राजा ने उसको इस साइड की दीवार दे दी और बीच में पर्दा लगा दिया, न ये देख सकता है न वो देख सकता है। ये वाला मेहनत कर रहा है पूरा चित्र बनाने के लिए, पेंट वेंट सब कर रहा है, और ये वाला चित्रकार केवल दीवार को पॉलिश करता जा रहा है, पॉलिश करता जा रहा है, बहुत बढ़िया पॉलिश करता जा रहा है। जिस दिन पर्दा हटाया गया, जो चित्र यहां बना था वही का वही चित्र उस दीवार पर ऑटोमेटिक आ गया। बाबा वही करा रहा है। जब बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूं, क्लीन हूं, क्लियर हूं, प्योर हूं, वो ऑटोमेटिक लोगों को जाएंगे, वही वाइब्रेशन लोग फील करेंगे। इसलिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अपनी दृष्टि को आत्मिक, डिवाइन और अलौकिक बनाना, अपनी दृष्टि को आत्मिक, डिवाइन और अलौकिक बनाना, कि हरेक को मैं देखूं जब तो केवल आत्मा ही दिखे, शरीर दिखे ही नहीं। डिप्लोपिया कब आता है, आंखों में दो दिखने कब लगते हैं, जब कई बीमारियां आंखों की आती है, उसको कहते हैं डिप्लोपिया, दो दिखने लगते हैं। यहां भी जब अंदर क्लियरिटी नहीं है तो दो दिखने लगते हैं, शरीर दिखता है और आत्मा दिखती है। यहां बाबा क्या कर रहा है, पूरे उसको एक कर रहा है कि जब कभी भी देखो आत्मा को देखो, भाई भाई को देखो, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करो कि ये मेल है या फीमेल है, वो भी खत्म हो जाए। उससे ऊपर उठकर मैं कर रहा हूं तब मैं कहूंगा मैं सोल कॉन्शियस हूं। अगर अभी भी मेरे को लगता है ये मेल है फीमेल है तो अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूं। वो लेवल तक जब आ जाऊंगा कि मुझे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, जो भी मेरे सामने आ रहा है बहुत अच्छी शुद्ध पवित्र आत्मा है और उसको उसी रूप में देख रहा हूं जिस रूप में वो सामने आई है, मैं उसको जज नहीं कर रहा हूं, नॉन जजमेंटल। जब हम किसी को जज करते हैं अपने आंखों से तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। यहां बाबा ने सिखाया मैं बिल्कुल नॉन जजमेंटल हूं, जिसको भी देख रहा हूं उसको उसके कंप्लीट फॉर्म में देख रहा हूं, वो भी एक सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग जो भी आत्मा है उसको उसी फॉर्म में देख रहा हूं। उसको ये नहीं कह रहा हूं ये ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी आत्मा है, ये भी कभी नहीं कहना कि ये ज्ञानी आत्मा, हमारे पास कई बार लोग लाते हैं ये ज्ञान में है ये अभी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी पाप है। हम किसी को डिक्लेयर नहीं करें कि ये क्या है, हमारा काम केवल है वो शुद्ध पवित्र आत्मा है, जिस रूप में हमारे सामने आई है उसको उसी रूप में ट्रीट करना है। हम लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, हमारे पास जो भी पेशेंट आता है चाहे कोई भी हो कैसा भी हो हमें हाथ लगाकर देखना पड़ता है। हम उस समय ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये कौन है, जो आ गई आत्मा उसको टच करके मेरे को देखना है तो देखना ही है, तो वो भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करें क्योंकि वो भी एक तरह से रॉन्ग है। तो तब हमारी प्योर वाइब्रेशन लोगों को मिलेंगे। जिस तरीके से शिव बाबा ब्रह्मा बाप में आए, दादियों को बनाया और उन्होंने हरेक को दृष्टि दी, पावर दिया, उसी तरीके से हमें भी करना।
चाहे वो द्वापर की आत्माएं कलयुग की आत्माएं, उसको उसी रीति से मेरे को देखना है, क्योंकि मैं राजा केवल सत्युग त्रेता का नहीं रहूंगा, मैं द्वापर और कलयुग के अंत तक चलूंगा और मेरे वो कनेक्टिविटी में आएंगे। तो हरेक से संबंध रखना है, कम्युनिकेशन रखना है, कनेक्टिविटी रखना है, पर न्यारा और प्यारा रहना। ऐसा नहीं हम छोड़ दें। तभी बाबा ने कहा जहां हो जैसे हो जिधर हो वहां पर ही आपको अपना निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि आखिरी समय कह के नहीं आएगा कि किधर कौन कहां रहेगा, वो अचानक आएगा। और उस सेकंड मेरी अगर प्रैक्टिस अच्छी है अशरीरी की, विदेही की, एक सेकंड में मैं डिटैच हो जाता हूं, तो मेरे को खुद ही सिग्नल मिलेंगे मुझे क्या करना है। अगर मेरा कैचिंग पावर अच्छा है तो पहले से ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, और वही संकल्प आएगा जो इस समय होना है। कोई मैसेज नहीं आएगा। कई लोगों ने कहा क्यों नहीं होता, बाबा हमें इतना ट्रेन कर दे रहा है कि बाबा का हर बच्चा अपने आप में शक्तिशाली है, वो खुद ही निर्णय कर सकेगा, परख लेगा। हमें बाबा निराधार बना रहा है। ये एक चैप्टर था, एक क्लास थी, निराधार स्थिति। बाबा हमें धीरे धीरे आधारों को खींच के निराधार बना रहा है। निराधार का अर्थ है कि मैं किसी भी इमोशनल साइकोलॉजिकल आधार मैंने नहीं पकड़े हैं। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और वो देखा कोरोना काल में, चीजें थी तो ठीक है, नहीं थी कुछ नहीं था तो भी ठीक है। नहीं तो अगर हम डिपेंडेंट हो गए, एडिक्टेड हो गए आवाज से, क्लासेस से, इससे, तो कहीं ना कहीं मैच हारेंगे। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अपने को, खुद को, मेरे को देखना है और एंजॉय करना है। तो धीरे धीरे मैं निराधार होते जाऊं। तो जितना ट्रांसपेरेंट होऊंगा, प्योर होऊंगा, सच्चाई होगी, निर्माण होगा, निमित्त होगा, वो देगा ही। दृष्टि से उसका कंस्ट्रक्शन होगा, उसका ऑरा काम करेगा। और हम सभी ने देखा, चाहे ब्रह्मा बाबा का सुना, मम्मा का सुना, दादियों का सुना, जब बड़ी दादी आती थी इधर भी तो क्या एक ऑरा आता था, एक एनर्जी आती थी। लोग दादी को नहीं देख रहे हैं, वो ऑरा को देख रहे हैं, वो एनर्जी को देख रहे हैं, वो पुल कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। हमें भी वैसा ही बनना, वही प्रैक्टिस करना। इसीलिए धीरे धीरे अगर मेरा एक बाप दूसरा न कोई पर मैं पूरा 100% हूं, मेरा निश्चय है खुद पर, ड्रामा पर, तो सब चलता रहेगा, आराम से चलेगा। ड्रामा चलता रहेगा, मैं उसको साक्षी होकर देखता रहूंगा। डर नहीं आएगा, घबराहट नहीं आएगी। सबसे बड़ा शत्रु आदमी का क्या है? डर और उसका नेगेटिव थॉट। वो कभी भी नहीं आने दो। अपने पर्पस को क्लियर रखो और उसको करते रहो। जो मिशन दिया गया है आत्मा में, उसको पूरा करते रहो। और मिशन है तो हेल्थ अच्छी है, मिशन नहीं है तो बीमारी है। रॉकफेलर, लास्ट रॉकफेलर अमेरिका का एक बिलियनर रहा है, ऑयल रिफाइनरी का। पहला ऐसा व्यक्ति था जो ऑयल रिफाइनरीज का मालिक बना, अथाह धन आ गया। रॉकफेलर फाउंडेशन का जो ट्रस्ट है इतना स्ट्रांग है कि पूरे वर्ल्ड में वो स्कॉलरशिप, एजुकेशन, हेल्थ के लिए पैसा देता है। आज भी वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट फाउंडेशन है। रॉकफेलर जब 53 इयर्स के थे तो बीमार हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कुछ ज्यादा समय नहीं है आपके पास, एक साल या दो साल। रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास इतना अथाह धन है, मैं क्या करूंगा। उसने अपने सब सीएस को बुला लिया, अकाउंटेंट्स को बुला लिया, बोला एक ट्रस्ट बनाओ और सब पैसा उसमें डालो और उस पैसे से हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए लोगों की मदद करो। उसके कारण ही पेनिसिलिन का पहली एंटीबायोटिक वर्ल्ड की 1928 में आई, उसी फाउंडेशन के उससे आई। वैक्सीन कई तरह के बाहर आए और स्कॉलरशिप दी। जैसे ही ट्रस्ट बना, एक साल के अंदर ही रॉकफेलर ठीक होने लगा, दो साल में वो ठीक हो गया, तीन साल में वो ठीक हो गया, 53 साल का था, डॉक्टर ने कहा 2 साल 3 साल, 98 इयर्स तक वो पूरी तरह से जिया, यानी 45 इयर्स और जिया। क्या सीक्रेट था? तो सबसे बड़ा हथियार वाइब्रेशन और दुआएं। कुछ नहीं कर सकते, दुआएं दो। यही बाबा सिखा रहा, शुभ भावना दो, शुभकामना दो, दुआएं दो। जो बाबा कहता है सब विजयी, सब विजयी रहें और सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, आई एम ओके, बाबा मेरे साथ है, आई लव माई सेल्फ। अब 1-2 मिनट हम सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, सब चीजें छोड़ दें, गीत भी बजेगा और उसी से पूरा भी करेंगे। पर इन 3-4 मिनट में हम दुआएं देंगे। दृष्टि का अर्थ है बुद्धि रूपी नेत्र को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे, उससे जो वाइब्रेशन जाएंगे मन और बुद्धि को एक करके, संकल्पों को और बुद्धि को एक करके पूरे वर्ल्ड में हम वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी देंगे, दुआएं देंगे। हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगम पर केवल एक ही है, एक ही है। मेरी ड्यूटी एक ही है, कैसे हेल्प करूं, हाउ आई कैन हेल्प यू, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। ज्ञान देना ये सब सेकेंडरी बातें हैं, केवल एक ही बात है मानवता की, हाउ आई कैन हेल्प यू। टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं बताता स्टोरी कैसे मानवता कनेक्ट करती है। तो हमारी ड्यूटी है लोगों को हेल्प करना, दुआएं देना। जो भी लोग हैं, जहां हॉस्पिटल में हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, सब जगह हमें जाकर दुआएं दें।